आओ सीखे भलाई की बातें, सबको सिखाए भलाई की बातें।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں فَأَحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو ان میں سے ایک ارشاد فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری یوں بلیے بات ہے لیکن ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی حوالے سے توجہ نہیں رکھتی اور پھر جب صحت ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور بندہ کسی مہلک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کا حال ہو جاتا ہے جسے شاید الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کچھ انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے اور کچھ یوں بولیے کہ چیزیں ڈیزیز کے طور پر ہو جاتی ہیں یہ پھر الگ الگ صورتحال پر الگ الگ ایسی بات ہے یہ کمنٹ اور تبصرہ کیا جا سکتا ہے بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہاسپٹل کی زندگی نا یہ آسان زندگی نہیں ہے میں نے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ بھی دیکھ رکھے ہیں اور اس کے علاوہ جو نارمل جو رہتے ہیں وارڈ کے اندر یہ چیزیں بھی دیکھ رکھی ہیں اور بھی مختلف یوں بولیں ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں نوٹ کی ہیں تو ہاسپٹل کی زندگی یہ بڑی ٹف زندگی ہے جو مریض ہے وہ تو مریض ہوتا ہی ہے لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا حال بھی بے حال ہوتا ہے نہ عید نہ شبرات نہ معراج شریف نہ کوئی تقریب نہ کوئی آیا گیا نہ کوئی دعوت یعنی بالکل ٹوٹل روٹین جو ہے یہ ڈیفرنٹ بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ چیزوں سے کٹ کر الگ تھلگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ایسے حالات سے پناہ ہی اللہ کی مانگنی چاہیے لیکن بعض اوقات یوں بولیے کہ بندہ خود اس نہج تک پہنچا ہوتا ہے ہمارا اپنا بعض اوقات قصور ہوتا ہے اور ہماری اپنی نیگلیجنس اور غفلت کی بنیاد پر ہم اس منزل پر پہنچے ہوتے ہیں انسان کی ارننگ رک جاتی ہے اس کا خرچہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یوں بولیے کہ اس کے ساتھ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جسے بولیں کہ جی سونا بیچ کے لگا دیا تو گھر بیچ کر لگا دیا اور پھر مرض ہے کہ قابو میں آ نہیں رہا جتنا بندہ علاج کرواتا ہے ایک جو ہے وہ مالدار آدمی بھی اگر ہو نا مالدار آدمی جس کو علاج کی سہولتیں اچھی سے اچھی میسر ہوں اس کی بھی بس ہو جاتی ہے بعض اوقات ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامن قدم العالیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مرحبا موجود ہیں حسن قبلہ مجھے کچھ دن پہلے میں شہری کر رہا تھا تو مجھے کسی نے اپنے بچے کی تصویر بھیجی اور بچے کو جو ہے وہ کینسر ہے اور بیٹا جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اسے ڈرپ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور کہنے والے نے جو ہے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ جی جب سے ماہ رمضان شروع ہے ہم یہی ہاسپٹل میں ہیں آپ یقین مانیں ایسا مجھے بڑا دل میں ایک کیفیت بنی ایک تعلق بھی ہے ان سے تو دعا بھی میں نے ان کے لیے جو ہے وہ کی لیکن آپ دیکھیے کہ اس نہج تک پہنچنے میں عام ایک روٹین میں کیا بندے کا اپنا کردار بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ہاسپٹلائز ہو جائے بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے بننے کی اپنی روٹین اس کے اپنے معاملات بھی کیا بننے کو اس ڈگر تک لے جا سکتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صحت کے تعلق سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو ہمارے معاشرے میں معلومات کی جتنی کمی ہے نا وہ اپنی انتہا کو ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں اس غور کر رہا تھا آج کے آپ کے پروگرام کے تعلق سے
جی
کہ ہمارے یہاں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے جتنی ڈسکشن کی جاتی ہے ایک عام طور پر ایک اسکول میں بھی جیسے کہ ایک بچہ 8-10 سال کا 12 سال کا جب ہو جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں بھی صحت کے تعلق سے اتنی اچھی اور عمدہ اور ان کی ایج کے مطابق معلومات دینی چاہیے کہ بچہ اسی عمر سے اپنے اندر ہیلتھ کانشیس ہو جائے.
مرحبا.
گھر میں بھی اصل میں نظام یہ نہیں ہے, ہمارا کچن مینجمنٹ نہیں ہے. اب یہ اسلائی بہن ہے اس کو شاید غور کرے گی, کچن پوری ایک سائنس ہے, کچن کی ایک پوری مینجمنٹ ہے. کیونکہ ہمارا تقریباً جو صحت کا جو مدار ہے وہ ہمارے کچن سے لگا ہوا ہے, کچن سے جو بن کر نکل رہا ہے وہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے.
ایسے
اور کچن سے کیا بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے, کیسے بننا چاہیے کیسے نہیں بننا چاہیے, یہ پوری ایک سمجھے کہ پورا سبجیکٹ ہے. جو کہ کیونکہ ہمارے یہاں لذت کوئی اہمیت ہے کہ چیز لذیذ ہونی چاہیے, خواہ وہ اندر جا کر ہمارے زندگی کے مزے کر کے نہ کر دے, مگر گلے تک یہ مزے دار ہونا چاہیے, پیٹ میں جا کر یہ سارے مزے برباد کر دے اپنے کو وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو جو کچن کا ایک اپنا سبجیکٹ ہے, یعنی کہ مائیں اپنے بچوں کو کھانا پکانا سکھاتی ہیں, مگر حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس کے بارے میں کتنے گھروں میں ایجوکیشن ہے, بلکہ جو دے رہی ہے ماں سکھا رہی ہے اپنی بچی کو خود اس کی اس معاملے میں کتنی ایجوکیشن ہے, اس کے تعلق سے ہمیں کتنی معلومات ہے کہ یہ جو غذا ہے جو پکا ہے خواہ وہ آئلی ہو نان آئلی ہو, چاول ہے سالن ہے گوشت ہے بڑے کا چھوٹے کا, سبزی ہے بننی نہ بننی, تیل کتنا ڈلا مسالہ کتنا ڈلا فلاں کتنا ڈلا یہ کتنا ڈلا, اور میری اپنی جو ہیلتھ ہے یا میرا جو اپنا جو معاملہ ہے وہ کیا چیز قبول کرتا ہے کیا چیز قبول نہیں کرتا. کئی لوگ ایسے جو گلا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ غذا نہیں چلتی, مگر وہ نہ آپ ان کو سمجھا دو وہ نہ سمجھے بھیا, وہ اس کو گولیاں کھانی ہیں گلے کی, لیکن وہ بھی کھانا ہے جس سے گلا برباد ہوتا ہے. کئیوں کو اسکن الرجی ہو جاتی ہے, ان کو دیکھیں تو ان کو تھوڑی سی غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا فلاں چیز کھانے سے ہم کو اسکن الرجی ہو جاتی ہے, اور بولو بھیا نہ کھاؤ تو اس کا بھی نہیں چلتا. یعنی شوگر کے مریض کو بغیر شوگر کھائے نہیں چلتا, اور بیچ میں وہ کوئی آیا تھا وہ شوگر چیک کرنے کا نا, اور بعضوں کا تو یہ کہ پٹا باندھتے تھے اور وہ موبائل گھماتے تھے اور شوگر بتا دیتا تھا, وہ الگ الگ میٹر آئے ہیں تو اب اس کو سامنے سویٹ رکھی ہوئی ہے, سویٹ رکھی ہوئی ہے ربڑی رکھی ہوئی ہے کھیر رکھی ہوئی ہے اور وہ کسٹرڈ وغیرہ جو بھی آپ بولو رکھا ہوا ہے, آئس کریم رکھی ہوئی ہے. اب حضرت موبائل نکالیں گے, ہاں یار ابھی ہے تھوڑا سا آج تھوڑی نیچے چلو کھا لو. تو یہ ہمارا جب اس طرح ہم ایسے ہیلتھ کے معاملے میں کمزور ہوں گے تو پھر جو نہ ہونے والی چیزیں نا سلمان بھائی وہ بھی ہو جائیں گی.
کیا ہوگا؟
پھیپھڑا خراب ہوگا, گردہ خراب ہوگا, اور آپ کا لیور خراب ہوگا. اس وقت ہمارے معاشرے میں میجورٹی, اگر میں کہوں کہ ہم میں سے شاید آپ بھی اپنا ٹیسٹ کرائے میں بھی ٹیسٹ کراؤں, کتنے تقریبا ہم سب تقریبا فیٹی لیور نکلیں گے, تقریباً ہمارا, یہ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی, تقریباً ہمارا فیٹی لیور والا حساب کتاب ہوتا ہے. اب لیور پر اگر فیٹ جمع ہونا شروع ہو جائے تو ڈیفینیٹلی لیور کے فنکشن میں فرق پڑے گا. تقریباً لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں یہ اگر اپنا ٹیسٹ کروائیں گے تو یا تو کسی میں کولیسٹرول نکل آئے گا, یا تو کسی میں ٹرائیگلیزرائڈ نکل آئے گا, یا کسی کا یورک ایسڈ نکل آئے گا, یا کسی کا شوگر بارڈر لائن پر آ جائے گا, کسی کا مطلب کہ وہ کچھ اور
بڑا ہوگا,
کچھ بھی مطلب کہ ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں, اگلا بولے گا ٹیسٹ کراؤں گا تو پتا چلے گا نا, ٹیسٹ ہی نہیں کرانا, ٹیسٹ خالی خالی خود کو ڈرانا دھمکانا کہ یار ابھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو میرے ایک جاننے والے سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ اسی طرح کا مطلب کہ بات کی تھی, تو میں نے کہا کہ کہہ رہی ہے تو آپ کی سوچ ہے, لیکن ہاسپٹل جانے کے بعد تو آپ بستر پر ہوگے اور ٹیسٹ ہو ہی رہے ہوں گے, اس وقت آپ روک نہیں سکو گے. یعنی جب آپ ہاسپٹل کے کسی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई आएगा, बुलेट निकालेगा। आप ही बोलोगे मेरा बुलेट है कि डोनेशन है। जिसको आता है मतलब कि वो मतलब जैसे कि खून की सभी लगी हुई है, जो आ रहा है लेके जा रहा है, जो आ रहा है लेके जा रहा है, जो आ रहा है लेके जा रहा है। तो इतने टेस्ट हो गए, फिर क्या करेंगे आप? तो इससे पहले कि आपका खून हॉस्पिटल में बिस्तर पर लिटा कर आपकी इजाजत हो या ना हो, आपसे पैसे लेकर निकाला जाए और टेस्ट किया जाए, निकाला जाए टेस्ट किया जाए, अच्छा है कि एक का देकर, डेढ़ सिलिन देकर आप अपने सारे टेस्ट करवा लो। उस वक्त हॉस्पिटल में तो आपको परहेज करनी पड़ेगी, बाद में परहेज करनी पड़ेगी, मगर लाखों रुपए खर्च करने के बाद फिर परहेज कर, अच्छा नहीं कि चंद हजार रुपए का टेस्ट करा कर फिर आप अपने आप को समझा लें। तो अब ये कि आपकी जब खून के अंदर जो रगे हैं, आपके बदन में जो रगे हैं, उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड घूम रहा है, अब उसको एक वो पाइप लाइन है, समझे आप
जी?
अगर आपकी पाइप लाइन ब्लॉक हो जाए तो प्रॉब्लम। अच्छा, पाइप लाइन में जो ब्लड आपको रन कर रहा है, दौड़ रहा है, अगर वो ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसको दौड़ने में प्रॉब्लम। अच्छा, वो गाढ़ा नहीं हुआ लेकिन आपकी जो वेन है, नसें हैं, उनकी दीवारों पर चिकनाहट या कोई तेज जम गई और उनकी गली छोटी हो गई
जी,
तो उनको निकलने में प्रॉब्लम, नतीजा हार्ट अटैक, क्योंकि वो जो हार्ट है वो पंप मार रहा है ना
जी,
पंप कर रहा है और आपके ब्लड को पहुंचा रहा है और आपका ब्लड आपकी जगह वो पहुंचा रहा है। अब उसको जब ब्लड नहीं पहुंच रहा होगा, उसको वहां से कमांड आ रही होगी, तो ये जोर से मारेगा पंप। अब ये जितना तेजी के साथ करेगा, ये क्या करेगा, तो डेफिनेटली फिर ये भी थकी जाएगा। तो यूं जिस्म के जो हमारे ऑर्गन ऑफ बॉडी अगर आप उसको कहते हैं, जिसमें गुर्दे भी हैं, हमारे फेफड़े भी हैं, हमारा हार्ट है, लीवर है, लबलबा है, ये लबलबा या इसको क्या
लबलबा ही कहते,
लबलबा कहते हैं, और हमारे
रियास भी कहते हैं,
इस और भी हमारे अंदर ऑर्गन ऑफ बॉडी है, इन सबके फंक्शन है। मैदे को हदीस पाक में बदन का हौज फरमाया गया,
सुभान अल्लाह,
कि मैदा जो
प्यारी मिसाल
बदन का हौज है
जी।
अब ये हदीस पाक है
जी।
अब हम हौज का तस्वर करते कि वहीं से सप्लाई होती है
जी।
अब खाना खाना हमारा हमारे मैदे में जा रहा है, अब मैदे में जा रहा है तो अब मैदे की अपनी उसका एक अपना फंक्शन है। अब हमारा खाना जब उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा होता है तो वो डेफिनेटली वो हजम में उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसको बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम हो रहा होगा, और फिर वहीं से फिर जो चीज अच्छी बनेगी बुरी बनेगी, उम्दा बनेगी गैर उम्दा बनेगी, वो अब आपके ब्लड में जा रही है। अब वो सारी चीजें जो है ना, एक ये प्रोसेस है, और ये कोई मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि डॉक्टरों के साथ बैठकर या इस तरह की गुफ्तगू का हिस्सा बनकर कुछ चीजें सीखी और समझी हैं जो कि मेडिकली तौर पर समझ में आती हैं। अच्छा, नॉलेज मुझे भी नॉलेज आप में मेरे आप बोले कोई सी नई बात है, बात नई पुराने की नहीं, हमारा अमल नहीं है असल बात। सिर्फ इल्म फायदा दे ना तो एक अलग बात होती है, इल्म फायदा देता है जब उसको अमल किया जाए। इल्म तो बहुत चीजों का है, मौत आएगी किसको इल्म नहीं है, लेकिन मौत की तैयारी कौन करता है? तो इल्म तो हमें बहुत सारी चीजों को होता है, ये करेंगे तो नुकसान होगा, फिर भी हम कर ही रहे होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता, अमल नहीं होता। तो अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो मैं तो इलाज बिल गिजा को ही प्रीफर करता हूँ पर्सनली। तो यानी मुझे भी बाज़ोकात कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है, मेरे घर में पता है मेरी ये प्रैक्टिस, तो मैं गिजा पर गौर करता हूँ, अमीर सुन्नत का भी ये अंदाज है यार, क्या ऐसा खाया था जिसकी वजह से ये हुआ है। अब उसको पहले ड्रॉप करें, उसको पहले इग्नोर करें, या उसको पहले अपने उसमें ऐसे मेन्यू से निकालेगा यार ये नहीं चलेगा।
तो खाना तो खा ही रहे हैं, देखें तो खाना ही है, दवाई खा लेते हैं साथ में तो कर ही रहे हैं।
इसलिए कहते हैं कि
मैं आपको एक बात
कहते हैं, दवाई की आपने बात की ना, कि खाने को दवाई की तरह खाओ, खाने को दवाई की तरह खाओ, वरना दवाई खाने की तरह खानी पड़ेगी।
अल्लाह हो बात तो दुरुस्त,
आपने मान लिया इतनी जल्दी,
दुरुस्त क्या बात है, सब दुरुस्त बात को मानना ही चाहिए,
मानना
और मानने में फायदा होता है। लेकिन ये जो एक रविश है सब के, जैसे शुगर के मरीज में एक लफ्ज होता है बद परहेजी अलाउंस, यानी जो मैं भी डायबिटिक हूँ तो वो जो इंसुलिन बिलखसूस लगा रहा होता है तो उसने एक रखा था भाई क्या है ये मेरा बद परहेजी अलाउंस, अगर मैंने दावत में मीठा खा लिया है और डीमेंट एक्सप्लीड जो है वो कर लिया तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यूनिट बढ़ा लूंगा। शुगर का मरीज जिसे एक अरसे तक ये होती है बीमारी, तो वो थोड़ा सा उसको अंदाजा हो जाता है कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है, यानी बाज़ औक़ात वो अपनी इंसुलिन की खुद ही एडजस्टमेंट कर रहा होता है, यूं एक सिलसिले का एक अरसे बाद जाके यूं बन जाता है। तो ये इस पर आप
जिंदगी भर केयर पर आ गया ना
जी,
क्या हुआ जिंदगी भर केयर पर आ गया, अब जिंदगी भर बस अपने आप को केयरिंग केयर करता रहे और अपने आप का बस वो मीटर होगा और ये होगा चेक करता रहेगा चलता रहेगा चेक करता रहेगा चलता रहेगा, और ये कम ले लो या ज्यादा ले लो, आ तो ट्रीटमेंट पे ही है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, अगर आप एहतियात करते हैं तो ये इलाज से
बेहतर है
बेहतर होगा। एक शख्स को किसी ने मीठा ऑफर किया कि अच्छा खासा मीठा ऑफर किया कि और लीजिए, मतलब बंदा होता है कि एक दो तीन स्पून ले लेता है, तो नहीं और लीजिए, तो कहा नहीं नहीं रहने दे, तो कहा आपको शुगर है, कहा नहीं मुझे करनी नहीं है, क्या जवाब दिया अगले ने पूछा आपको शुगर है, उसने कहा नहीं मगर मुझे शुगर करनी नहीं है, तो अब अगर आपका ये जहन बन गया ना, आपका कोलेस्ट्रॉल है नहीं मुझे कोलेस्ट्रॉल पालना नहीं है, आपको ट्राइग्लिसराइड है नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्राइग्लिसराइड लाना नहीं है, अगर आपका ये अच्छा ट्राइग्लिसराइड किससे आता है, कोलेस्ट्रॉल किससे आता है, यूरिक एसिड किससे बढ़ता है, शुगर किससे बढ़ता है, फिर बीपी कैसे हो जाता है, ये जितनी नाम मैं ले रहा हूँ आपको, फैटी लीवर कैसे बन जाता है, मैदे पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, जिगर प्रॉब्लम कैसे करता है, तो आपके ये जो दीगर जो ऑर्गन ऑफ बॉडी हैं वो कैसे आपके प्रॉब्लम में आ जाते हैं, गला कैसे इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें, आपके मसल्स प्रॉब्लम कब कर रहे होते हैं, आपकी फलाजिस कब प्रॉब्लम कर रही होती है, मैं मेरा अपना मशवरा है आप सबको, स्पेशली जो एजुकेशन फील्ड से जो लोग हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे वो मदारिस के अंदर हो या स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हो, कि ये सब्जेक्ट हमारा बाकायदा होना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट को हेल्थ कॉन्शियस बनाएं और इनको बाकायदा चार्ट के जरिए और ये सब बताएं कि ये चीज़ें ये गुड फॉर हेल्थ है, ये इसको कहते हैं कि नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये एनर्जेटिक है कि नॉन एनर्जेटिक है, ये पूरा कैलोरीज का पूरा चार्ट बना हुआ कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं इसमें इतनी कैलोरीज हैं, ये बहुत टेस्टी है लेकिन लो कैलोरी है, ये भी टेस्टी है मगर ये हाई कैलोरीज हैं, फिर आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी कैलोरीज बर्न कैसे करेंगे आप, और आप अपनी कैलोरीज को यूटिलाइज कैसे करेंगे, अगर आपकी कैलोरीज स्टोरेज होती चली जाएगी तो वो आपके अंदर फैट इस्टेब्लिश करती है, ये पूरा एक अच्छा ये एक अच्छा ये जब बंदे को उस वक्त पता चलता है ना जब ये मतलब कि फिर पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब मतलब कि कहते ना कि घर का खर्चा बढ़ जाए और वजन बढ़ जाए इसको कम करना आसान नहीं होता, बहुत कंट्रोल करने में बड़ी मतलब जान निकल जाती है,
ऐसी बात।
तो मेरी दरखास्त यही है कि फैमिली को भी इस मामले में यानी पेरेंट्स को इस मामले में मालूमात देनी चाहिए, यकीन माने जो मैं कह रहा हूँ ना इस पर इस वक्त दुनिया में इतना काम हो रहा है, अब इस वक्त हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये इस वक्त दुनिया का सबसे अहम सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट है हेल्थ का, और अगर पेरेंट्स इस पर सीरियस हो जाएं और अपने किचन के अंदर इस तरह को हेल्थ चार्ट लगा लें हेल्थ कार्ड लगा लें और फिर उसी तरह की चीजें घर में लाई जाएं और इस तरह के मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती
हैं, माँ को भी आसान लगता है ना, माँ कहाँ बनाए क्या करे, बच्चों को पैसे दे जाएं बाजार से लाएं पापड़ खाएं जो मर्जी खाएं,
मानी करते माएं भी करती हैं वालिद साहब भी करते हैं और ये बच्चे जाते भी हैं और माँ बाप की मनानी करते और ये सब कर करा कर आते हैं, ये बच्चे अकेले जाते हैं चीजें खाने के लिए, फिर माँ बाप के साथ जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, जो टाइम माँ बाप ने बचाया होता है ना वो डॉक्टर साहब ले जाते हैं, अब डॉक्टर साहब 3 घंटे 4 घंटे बिठाएंगे और फिर डॉक्टर साहब डांटेंगे, उसको हमने जरूर चिप्स खिलाया होगा, उसको हमने जरूर हमने ये खिलाया होगा, माँ बाप भी बोलेंगे हाँ ठीक है, अब डॉक्टर को भी दुआएं तो है ना बरकत की,
अल्लाह रहमत करे ऐसा, ये जो चिप्स की बात आपने ले लिया,
आपने ली मैंने नहीं ली थी,
चले चिप्स की बात मैंने ले लिया, चले यूं आ जाए, ये जो गंदे तेल में चिप्स बना रहे हैं गंदे मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं और केचप के नाम पर जो तबाही है अल्लाह की पनाह है, यानी आलू का पेस्ट है उसमें पता नहीं क्या डाल के हेपेटाइटिस का मतलब उसको माजून बना के उसको जो है ना खिलाया जा रहा है, दुनिया खा रही है,
हमारे यहाँ है हमारे यहाँ है बाहर भी है,
आप हैरान होंगे सब, टमाटो केचप में टमाटो ही नहीं है, यानी आप हिसाब लगाएं, एक तो वो जो जो है सो है वो एक अलग बात है, लेकिन टमाटो
और जो
केचप है
ऐसा बनाते वैसा बनाते, अभी अब सस्ती चीज मिल रही होती है, लोग खुश हो रहे होते हैं
ऐसे।
और वो समझते हैं कि ये बन गया होगा और ये ऐसी चीज हो गई होगी। असल में हमारे यहाँ ना प्रेजेंटेशन बिकती है, प्रेजेंटेशन समझते हैं, इसका दिखना बिकता है, पैकिंग बिकती है, अंदर के मटेरियल से किसी को कोई गरज नहीं होता। जाहिर अच्छा होना चाहिए, बातिन को क्या करना है, इसको यूं समझ लें आप। लेकिन सच्ची बात है, जाहिर भी अच्छा होना चाहिए, बातिन भी अच्छा होना चाहिए, तभी मजा आता है। तो दुनिया में भी है, दुनिया में भी इस तरह की मतलब गफलत वाली चीजें बहुत हैं, बहुत है आज की दुनिया में। ऐसे मुल्क हैं जिनमें बीमारियां इतनी हैं, वही वजह उनकी भी यही है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल का ये जो शोबा है, हेल्थ कॉन्शियस का या हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस देने का, ये इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि लोग वाकई परेशान हैं और उनकी परेशानी का हल दिया जा रहा है। लेकिन हम भी आदि हो चुके हैं असल में, हमें परेशानी का हल तब मिलना शुरू हुआ है जब हम चीज़ों के आदि हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख नोट कर लें, हमारी एज नोट कर लें, मैं कह रहा हूँ हमें बचना है, मुझे बचना है, आपको बचना है, जितने भी मुझे देख और सुन रहे हैं हम सबको बचना है। मगर अब कम से कम ये कि हम तो जो ले चुके अब तो हमें मतलब कि वो कुछ चीजें माइनस करनी है, कुछ चीजें प्लस करनी है। लेकिन जो अब हमारी कमिंग जनरेशन है
जी,
प्लीज इनको, इन पर रहम करें, अपने घी तेल मिर्चियां और दीगर जो चीजें हैं उनको प्लीज मैनेज करें। और मैं अपनी इस्लामी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कोई भी एक अच्छा लीगल वे यूज करके, शरी तरीका यूज करके आप बाकायदा अपनी ऐसी रेसिपीज इस्टेब्लिश कर सकती हैं, करवा सकती हैं कि जो गुड फॉर हेल्थ होगा, टेस्ट भी। मैं अपनी इस्लामी बहनों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्जी सब्जी नहीं खाई जाती घर में,
आजकल सस्ती भी बहुत है सब,
हाँ नहीं खाई जाती घर में। जिनके घरों में खाई जाती है ना, उनके मालूम आते हैं उनके घरों में सब्जी टेस्टी बनती है। सब्जी बनाना सबको नहीं आती, सब्जी खाए तो बंदा बोले यार अब मैं यही खाऊंगा, दाल खाए बंदा बोले मैं यही खाऊंगा, यानी ये टेस्ट, जब टेस्ट आएगा ना, अच्छा अगर टेस्ट के लिए ये चीजें मिर्च मसाले मारने पड़ते हैं, किसी ने गलत बात की है, ये अफवाहें इसको छोड़ दें आप, मतलब कि इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने हाथ के अंदर एक लाना पड़ेगा और मालूमात देनी पड़ेगी और उसको किस तरह बनाना ये देखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें बहुत अच्छी बनती हैं और आदमी खाता रहे, भिंडी खाएं कितनी टेस्टी बनती है, दाल कितनी किस्म की दालें बंदा वो खाए तो कितनी टेस्टी बनती है, कड़ी पके कितनी टेस्टी बनती है, इतना तुरई बनती है, तुरई सब्जी आउटस्टैंडिंग होती है, तुरई बनती है और भी एक से एक सब्जियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नियमत।
आप मुझे वेजिटेरियन लगते हैं सब,
मैं मतलब आई लाइक दिस, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है और मतलब के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद है। तो है और भी चीजें हैं जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं जो भी बनता है, लेकिन मैं इस्लामी बहनों से अर्ज करूंगा इनको पकाना कैसा है ना, इस पर किसी माहिर कोई ऐसे इस्लामी बहनें होंगी जिनके हाथ में अल्लाह ने टेस्ट दिया होगा, उनसे मशवरा कर लें, ये ले लें वो ले लें और पकाएं, तो बच्चों का भी दिल लगेगा, बच्चे भी खाएंगे, बच्चे भी इससे मतलब के लुत्फ उठाएंगे। वरना बातों का ये होता है कि हम सब्जी बोलते हैं सब्जी खाओ, गले से लाओ, गले से उतरे नहीं तो बंदा करेगा क्या, ये होता है। तो इसको मतलब के मैचिंग की कुछ चीजें साथ रखी जाती हैं तो इंशाल्लाह ताला ये काफी चीजें जो है ना आप कंट्रोल करेंगे। अच्छा ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप सीरियस लेंगे और हमारी बात से आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ काम की बातें हो रही हैं, सेहतमंद रहने की बेसिक नीयत एक बना लें, इबादत तो कुवत पाने के लिए मैं सेहतमंद रहूंगा, और अपने आप को बीमारियों से बचाएं, इन गिजाओं से बचाएं जो आपको बीमार कर देती हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से इबादत में, नमाजों में, सज्दे में, रुकू में, उठने बैठने में, तस्बीहात पढ़ने में, रोजा रखने में, हज करने में, उम्रे करने में, तवाफ करने में आपको बहुत लुत्फ आएगा। आप मस्जिद में बैठ सकेंगे, वरना बाद होगा पेट की खराबी बंदे को मस्जिद में नहीं बैठने देती और फिर बाद में मतलब खराबियां पैदा होती है, फिर जना वो खट्टी डकारे आएंगी, गला खराब, तो फिर बदबू निकलेगी, वल्लाह वाला बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल बन जाती है। अब एक इबादत करने वाले के लिए तो फिर बड़ी आजमाइश शुरू हो जाती है और फिर बाद फिर ऐसा खाने का अंदाज हो जाता है कि चार आदमी तमीज और एक रिस्पेक्टेबल लोगों के दरमियान मसला हो जाता है। एक और बात, सादे से सादा खाने की भी आदत रखिए, वरना ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे आप। मैंने देखा है कि बास लोग ट्रैवलिंग में बड़े आजमाइश में आ जाते हैं, उनको उतरता ही नहीं है। तो हर चीज हलाल और तैयब खाने की आदत रखें।
मरहबा,
हलाल और तैयब है, अब खा लें वो, वरना मतलब मसला हो जाएगा। हम तुर्की में थे, कोनिया में, कोनिया जहाँ मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का बाजार शरीफ है। अब खाने के मसाइल थे, भूख बोले के बस आई ना मैं, और ऐसी आई है कि बस आई है, सोए भी नहीं थे, और शहर भी उस टाइम नया था। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वहाँ पहुंची, अल्लाह का शुक्र हमारा काफिला पहुंचा था।
सुभानअल्लाह।
तो अब खाएं क्या, मसले थे। उस वक्त जो हमने गाजर और दही खाई है ना, मतलब दही के साथ गाजर खाने का ये जिंदगी का पहला और अब तक आखिरी तजुर्बा। तो अब करे क्या, अगर गाजर मिला और दही मिली, मैं कहा यार आप ये मतलब बनाओ मूड ना, मूड बनाना पड़ रहा है। जो तुम चाहते थे तुम्हें ना मिला, तो जो मिला उसे चाह लो, जिंदगी आसान हो जाएगी।
क्या बात है, माशाल्लाह। हमारे पास जनरल कंसल्टेंट है सर, वो मुख्तलिफ चीजों के हवाले से हमें बता रहे, जिसमें यूं बोले कि बाद वक्त बंदे को फालिज हो जाता है और इस तरह की दीगर मसाइल हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं, आइए आपको जो हमारे जनरल कंसल्टेंट है उनकी तासुरात दिखाते हैं। जी,
मेरा नाम डॉक्टर ताजुद्दीन है। मैं यहाँ पे बद्दी हेल्थ केयर सेंटर में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम करता हूँ। अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं फालिज के हवाले से भी आते हैं, और ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर उसकी केयर नहीं कर रहे होते, उसका एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि उन लोगों को फालिज का अटैक हो जाता है। हमारे पास एक बड़ा गलत तासुर ये है कि जी सर में दर्द है तो शायद ब्लड प्रेशर होगा तो खा ली, अगर सर में दर्द नहीं है तो ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाई। ज़रूरी नहीं है कि किसी को सर में दर्द हो तो ही ब्लड प्रेशर होगा, बाद ऐसे भी मरीज होते हैं जिनको सर में दर्द नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर 180 190 200 तक भी होता है, और ऐसे जो मरीज होते हैं किसी भी टाइम भी अचानक जो है उनको ब्लड प्रेशर शूट करता है, उन्हें ब्रेन हेमरेज का डर लगता है। इसी तरह जो है वो जो शुगर के मरीज हैं, कई उन्होंने कहा जी जो है पेशाब ज़्यादा आता है, अब पेशाब नहीं आ रहा, अच्छा इसका मतलब है शुगर जो है वो कंट्रोल में, शुगर की दवाइयाँ छोड़ दी। 250 300 400 जो है वो शुगर होती है, उसके बाद जो है उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि या तो दिमाग पे या आँखों पे या दिल पे या गुर्दे पे या नसों पे, यहाँ पर जो है वो शुगर अटैक करती है, और उसका रिजल्ट जो है बाद में मरीज़ की अपाहज होने की सूरत में या ज़ख्मों की सूरत में या गैंग्रीन की सूरत में ये आता है। मेरे पास जब ये पेशेंट आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको जो है वो ये समझाने की ट्राई करूँ कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है तो हो गया है, किसी को अगर शुगर हो गया है तो हो गया है, दवा खानी है, अगर दवा नहीं खाएंगे तो आपको ही जो है वो नुकसान होगा। खासतौर पर जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि हमेशा एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, रोज़े के अंदर एक्सरसाइज करना मना नहीं है। आप अगर जो है वो इफ्तार में जो है इफ्तार करने के बाद जो है 15 मिनट को एक्सरसाइज कर लें, उससे आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपके जो है डिप्रेशन में फ़र्क पड़ता है। प्लस एक चीज़ होती है वो कहलाती है मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है हम पेशेंट्स को बताते हैं, वजू करते हैं जब हम, ख़ास तौर पे जिसमें एक चीज़ होती है हम कहते हैं मस्सा करना, मस्सा करना जो ये है, ये जब हम मस्सा करते हैं तो मस्से से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ अच्छा होता है उसकी वजह से जो है। और दूसरा ये कि अगर मस्सा करते हैं तो ये भी तहकीक में आई है कि एक बहुत बुरी सी चीज़ होती है उसको कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, वो उससे भी बचाव हो जाता है अगर आप जो है वो मस्सा करते रहें तो, इतना सर्कुलेशन रहता है कि डिप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा ये कि जब आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज में एक चीज़ होती है सजदा, सजदा जब आप करते हैं और सजदे को अगर आप थोड़ा सा तवील कर लें उससे भी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ता है, और कहते हैं ये कि उससे आपकी याददाश्त जो है वो बहुत बेहतर होती है।
माशाल्लाह। एक तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि ये दवाइयाँ जो हम यहाँ पिक्चर में दिखाते हैं ना, इसका बदन इतनी इतनी खूबसूरत करके दवाइयाँ दिखाते हैं कि आदमी बोले गया थोड़ा बीमार हो जाओ, एक आदमी मेडिसिन ले ही लेना चाहिए। तो बहुत दवाइयाँ जो है ना इतनी वो करके दिखाएं कि आदमी को जो दवाई देख कर ही थोड़ी वो हो जाएगा, वहशत हो जाएगा यार ये दवाई नहीं खानी। वो खूबसूरत करके बड़ी साफ सुथरी रंग बिरंगी जैसे कि बंटी रखी हुई है, اور اللہ پاک حفاظت کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی مفید و کام کی باتیں بیان کی ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سیکھنے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. عرض یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے فوراً میڈیسن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. سر میں درد ہے میڈیسن لے لیا, کچھ اور درد ہے میڈیسن لے لیا. ہونا یہ چاہیے کہ میڈیسن کے بجائے ہم اس کی سبب, مثال کے طور پر کئیوں کو سر میں درد ہوتا ہے, اور کئیوں کے سر کے درد کی وجہ جو ہے نیند نہ ہونا ہوتا ہے, نیند نہیں ہوئی یا صحیح نیند نہیں ہوئی ہے, تو اب وہ سر کے درد کی گولی کھا لیں گے. اس کا حل گولی تو نہیں تھا, آدھے گھنٹے ایک گھنٹہ سو جائیں, اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سر کا درد صحیح ہو گیا ہوگا. تو اس طرح کی چیز اب میرے سنیں تو پچھلے دنوں مدی مزاق نے بتایا کہ ہم اس طرح فرماتے ہیں مجھے میری یہ جو سائڈ تھی نا
جی,
میری سائڈ میں درد, اور درد بھی درد تھا. تو اب یہ درد کو اب غور کرنا ہے, درد ہوا کہاں سے. تو پھر امیر سنن نے اس پر غور کیا تو پتا چلا کہ چونکہ فوراً میں ملاقات یوں کرتا تھا تو میرا سارا یہاں جو ہے نا یہ ویٹ یہاں آتا تھا, تو کرتے 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 میرے یہاں درد شروع ہو گیا. جب میں نے اپنی پوزیشن سیٹ کی تو, اور پھر جب میں یوں نارمل ملنے لگا اس طرح, تو میرا درد آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو اس طرح میڈیسن کی طرف فوراً نہ جائیں, کوشش کریں کہ خود کو میڈیسن سے بچائیں, کیونکہ میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں. اگر آپ کی وہ وقتی طور پہ بیماری کو کنٹرول بھی کرتی ہے, مگر اس کے کھانے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی لا سکتی ہے.
کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی
تمام رضا تاریخ کا پروگرام مدینہ طیبہ ملتان. صحت کے حوالے سے آج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہوٹلنگ ہے اور بے تحاشا ہوٹلنگ ہے, اور کئیوں نے تو اپنے کچن کو چھٹی کروا دیا ہے. ہوٹلنگ اتنی آباد ہے کہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحت کے حوالے سے کیا ہے. تو ہوٹلنگ کی کس انداز سے اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے, اور کتنا بچنا چاہیے اس حوالے سے؟
میکسیمم بچنا چاہیے 100% تو نہیں بچا جا سکتا.
ہوٹل میں جو کھانے کے مزے ہیں گھر پہ کہاں یہ ٹیسٹ ملے.
دیکھیں ایک تو ہوٹل ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں گھر بار نہیں ہے, کئی لوگ مزدور ہیں باہر سے آئے ہیں فیملی نہیں ہے, وہ کہاں کھائیں گے؟ ہوٹل میں جا کر کھائیں گے ڈیفینیٹلی, انہوں نے کھانا کھائیں. یا پھر وہ ان میں بھی بعض وہ لوگ ہیں کہ جو پھر بھی ہوٹل کو پریفر نہیں کر رہے,
خود بنا لیتے
ہیں. نہیں گھروں کے اندر سے جو بنتا ہے نا ٹفن بنتے ہیں گھروں کے اندر, یہ گھر وہ خواتین کہ جو گھریلو قصب اختیار کرتی ہیں, یعنی کہ ہوم اکنامکس کے طور پہ جاتی, تو یہ کیا کرتی ہیں گھر کا کھانا بناتی ہیں اور ان کا کھانا باہر بک رہا ہوتا ہے. یہ ٹفن بنا بنا کر دے رہی ہوتی ہیں, وہ بکنگ لے رہی ہوتی ہیں, اور ان کی منتھلی انکم ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو وہ بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ گھر کا کھانا, اچھا اس میں پورا مینیو ہوتا ہے کہ روٹی ہے تو سالن ہے تو چاول ہے تو یہ ہے وہ ہے, تو وہ بھی اس طرح کے لوگ بھی گھر کے کھانے کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آفیسز کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ وہاں کی کینٹین کا کھانا کھانے کے بجائے, اچھا آپ دیکھیے کہ لوگ کینٹین سے بات چلی, لوگ کینٹین کا کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں اور لنچ باکس کے ساتھ نکلتے ہیں. رائٹ, ان کے دو فائدے ہیں, ایک تو وہ ہیلتھ کانشیس بھی ہو جاتے ہیں, دوسرا ان کے پیسے بچتے ہیں. کینٹین میں کھانا ہوٹل میں کھانا پھر بھی گھر سے تو مہنگا ہی ہے نا یار.
صحیح,
یہ ہوٹل سے آپ مطلقاً تو لوگوں کو روک ہی نہیں سکیں گے, ورنہ تو وہ جو جن کے گھر نہیں ہے یا جن کے اس طرح کے ایشوز ہیں وہ کیا کریں گے. یہاں وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ صحیح کہہ جنہوں نے کچن کو گویا کہ ایک طرح سے لاک کر دیا ہے, اور ناشتہ بھی باہر کرنا ہے تو بریک فاسٹ لنچ ڈنر باہر کرنا ہے یا باہر سے آ جائے گا, یا اب تو ہوم ڈلیوری کا سلسلہ ہے. دیکھیے کبھی کبھار کا ہونا یقیناً اس کو تو کیسے روکا جا سکے گا, لیکن اس کو ریگولر طور پہ لے لینا جو ہے نا, خالی اب ہوٹل کی نہیں ہے, جو روزانہ دعوتیں کھاتے نا ان کی حالتیں پوچھیے آپ. دعوتوں میں جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی یہی آؤٹ ڈور کچن کا بنا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اچھے اچھے آٹھ غذائیں ہوتی ہیں کھانے کے اندر, تو وہ تلی ہوئی روز کھا رہا ہے روز یہ پی رہا ہے, تو اچھا پھر فری ہے. اگر فری نہیں, اگر لفافہ دیا تو پھر زیادہ اس کے اوپر آیا ہوگا, یا لفافہ بھی دیا ہے تو کم از کم جتنا لفافہ دیا بندہ اتنا تو لے گا. تو یوں پھر اس طرح کی پھر وہ سوچ بن جاتی ہے, پھر پورا ایک وہ کام کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ تو سلاد پر ہاتھ مار تو سالن پر ہاتھ مار تو چاول میں پکڑ لوں گا, تو بیٹا بوتل تو تیرے جتنی بوتل جی اٹھا سکتا نا بوتل اٹھا کے لے آنا, اور ایک ٹیبل پورا ایک ٹیم ورک کا کام دے رہی ہوتی ہے, اور جناب اس کے اوپر اتنا سارا پڑا ہوا ہوتا ہے, بھائی یار एक आदमी कम था यार, वो फिराया निकल गए यहाँ से। इतनी बेचैनी होती है कि बाज औकात तो सालन का चम्मच उठा के बिरयानी में डाल देते हैं, वो अगले ने बिरयानी का चम्मच उठाया हुआ है, दूसरा है ही नहीं, वो कब छोड़े के मैं लूँ, सालन का चम्मच फारिग है, बोले तू क्यों फारिग रह रहा है, तुझे भी काम में लगना चाहिए था। तो सालन का चम्मच निकालते सीधा बिरयानी में डालते हैं, बिरयानी का चम्मच निकाल के सीधा कौरमे में डालेंगे, ये हालत होती है, कोई मतलब वो नहीं होता। अब जो खाएंगे ना, यकीन माने बस खाएंगे ना, खाएंगे क्या, तशद्दुद हो जाता है, वो क्या अटैकिंग पोजीशन में होते हैं, जब खाना है और हम हैं, एक तो लेट लेट क्यों खोला इन लोगों ने, हम इतने भूखे आए थे, इनको अंदाजा नहीं था, और लिफाफा भी ले लिया और खाना भी नहीं दे रहे थे जल्दी, फिर जो खाने पर ये इंतकामी कार्रवाई हो रही होती है, देखने जैसी होती है, अल्लाह की पना
है आपको एक तो, मजेदार बात।
अब इसमें क्या, जो कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, सलमान भाई ये दावतों में जाते हैं, जाना होता है बाद अवकात, घर से खाकर जाते हैं, यानी वो अच्छा, ये जो जिनको ये सुन भी रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, बोला यार ये सही कह रहा है, इनमें एक तादाद घर से खाकर जाती है, अब तसल्ली में, भूख ने इनका दिमाग खराब नहीं किया हुआ, अच्छा खाना खुले ना खुले, इन्होंने बादों का दो दो तीन तीन जगहों पर भी जाना होता है, एक आदमी को दो दो तीन तीन दावतें निपटानी होती हैं, तो अब ये मतलब ये फिर हल्का फुल्का सा कुछ कर करा कर, और कईयों को देखेंगे तो जाकर सलाद पर ही हाथ रखेंगे, सलाद खाएंगे या एक आध और चीज ले लेंगे, खाना खा लिया और मुलाकात करके ये लोग चले जाएंगे। ये हेल्थ कॉन्शियस किस्म के लोग भी आपको दावत में मिलेंगे, तो इस तरह होटलिंग का और रोजाना दावतों का, देगों का और बाहर के किचन का जो खाना अंदर जाएगा, तो वो खाना फिर खाना खराब ही करेगा वो।
अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं एक शादी पर मैंने देखा, एक बंदे ने जो है ना वो अपने चम्मच में उसने एक जो है ना वो उठाई, लेग पीस उठाया, और दूसरे ने, आप हैरान होंगे, उसके चम्मच से उचक लिया उसको, अल्लाह की पनाह है, नहीं तौबा, अल्लाह इस इसका भी
उसके मुकद्दर में लिखा था,
अल्लाह मुकद्दर में ऐसा
उसकी तकदीर के उसको मुर्गी की लात खानी होगी,
अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह इस खाने की इस हिर्स से बचाए, और अल्लाह हमें
अल्लाह
बाअदब बनाए, और ऐसा अल्लाह ताला
ऐसा रहे कि लोग आपकी इज्जत करें, कदर करें, कोई ये ना कि भूखा आदमी आया यार। जी
जी कॉल,
हमारे बीमार होने में हमारी खुराक का कितना अमल दखल है?
बहुत बड़ा दखल है, बहुत बड़ा दखल। अगर मैं कहूँ कि शायद बीमार होने में बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा हमारी गिजाओं का है, तो शायद गलत नहीं होगा, ना मेडिकल अल्लाह ना शायद मेडिकल भी इसको गलत नहीं कहेगी, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को खाने के साथ हेल्थ कॉन्शियस रखा है और उस तरह की गिजाएं रखी हैं, अब देखिए कि इनकी सेहत का दौरानिया बढ़ जाता है। बीमारियाँ एहतियात करने वाले को नहीं आती ऐसा नहीं है, आती हैं, उनको खांसी भी आती है, नज़ला भी आता है, बुखार भी आता है, इंसान की जिंदगी, इंसान के बदन में बीमारी का एक ना एक हिस्सा निकलता है, वो मैं कहता हूँ सेहत की ज़कात होती है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, तो बीमार तो बंदा हो भी जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि बेहतियाती की तभी बीमार हो गया, लेकिन हमारे यहाँ बीमार होने वालों में बड़ी तादाद बेहतियाती करने वालों की है।
लाइफ रूटीन का कितना किरदार है सेहतमंद रहने या ना रहने?
वक्त पर खाएं, एक वक्त फिक्स कर लें खाने का, आपको उस टाइम पे भूख भी लगेगी और आपका आपको वो एक रूटीन आपकी बन जाएगी, आप अपने वक्त पर खाएं। और अच्छा ऐसा होता है बाज़ औक़ात के जैसे हम सफर में होते हैं ना, अब जैसे हमारा जदवल है, मेरे तरह औरों को भी इस तरह के लोगों की रूटीनें बनती होंगी, अब हम उठे, अब हमें निकलना है, तो पहले लंच हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, लंच हो जाएगा, लंच के बाद कहीं जाना, ये अब अच्छा मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये हमें आना है तकरीबन 12-15 घंटे के बाद, तो 12-15 घंटे मुझे ये आउट ऑफ कंट्री ज्यादातर ये होता है, इन कंट्री कम होता है, तो अब मुझे पता है 10-12 घंटे जाना है और यही यहाँ जाना है, पता तो होता है मुझे कहाँ कहाँ जाना है, और जहाँ भी जाना है ना कुछ होना है। अब आपको पता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल के पूरे दिन में 1 किलो खाना खाना है ओवरऑल, तो अब या तो वही 1 किलो खा लो और बकिया देखो, या फिर ठोसो, या फिर आपको पता होना चाहिए यार ये मैं रात तक इसी को मैनेज करूंगा, तो यहाँ से थोड़ा सा लिया, फिर थोड़ा सा लिया, फिर थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा लिया, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ तो चलेगा, बस जगह पर थोड़ा स्लो कर दें, मना कर दें, चाय ज़्यादा ना पिए, ये ना पिए, वो ना पिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को इस तरह मैनेज करके चलेंगे, घर के अंदर भी अपनी रूटीन बना लो, मेरे सुन्नत को आप देखिए कि 2 टाइम उमूमन इनके पास खाना होगा, नाश्ते के तौर पर और शाम को ये तकरीबन आप 99% कह लेंगे रात को इसी तरह मगरिब और इशा का जो वक्त होता है ना, इस टाइम पे ही खाना खा लेंगे, और फिर ऐसा नहीं कि बार बार खाते रहेंगे। तो अच्छा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना, मैं एक और बात बताता चलूं
जी,
ये मैंने पढ़ा भी था, रिसर्च पढ़ी थी, और उसके बाद इसको जब मैंने बयान किया, जो अमल किया, उनको फायदा हुआ, अमीर सुन्नत ने भी इसको बयान किया। अब जब भी खाना खाए ना, 10 से 12 मिनट 15 मिनट पैदल चले, ये जो लबलबा होता है ना, ये ऐसी चीज निकालता है उससे, कि उससे आपकी शुगर अगर है तो कंट्रोल हो जाएगी, नहीं है तो इंशाल्लाह होगी नहीं, और आपकी इंसुलिन का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये भी अगर हो सके तो प्रैक्टिस में ले लें कि जब आप खाना खाकर, अब जैसे हमने खाना खाकर उठे ही नहीं बैठ गए, ये चाय पी उठे नहीं बैठ गए, अच्छा फिर कुछ हुआ तो मगरिब के बादों का नींदें आ जाती हैं, तो खाना खाते फिर सो जाते हैं, अब अंदर में ये पकौड़े समोसे और सारा कस्टर्ड मस्टर्ड डाला हुआ है, और ये आकर जनाब सो गए, तो ये चीज़ें फिर बादों का होती है। अच्छा ये भी बताता चलूँ, एक एक चीज़ याद आ रही है, कि ज़रूरी है कि मोटा आदमी ही बीमार होगा। मैंने इन तीय दुबले पतले लोगों का हार्ट फेल देखा है, इनकी दीगर बीमारियां देखी हैं, बाज औकात खाना जो है ना आपके बदन को नहीं छेड़ रहा होता, मगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन और ब्लड के अंदर प्रॉब्लम ला रहा होता है। तो बाज औकात जैसे कि जो समझे कि यूरिन में शुगर आ जाती है, तो कभी ब्लड में शुगर आ जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आपको कुली इख्तियार आता है कि आप जो चाहे ले लें, आपके ब्लड में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आ जाएगा, और मतलब के शुगर ब्लड में आ जाएगा, और फिर अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर बीपी हो जाता है, पता है, फिर ब्लड प्रेशर, फिर लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर बीमारी जम जाती है, इलाज नहीं हो पाता ना, तो अपनी जगह बना लेती है, फिर 6-6, 7-7, 8-8 साल तक इलाज कराना पड़ता है। अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद जिंदगी की नियमत अता करे, इस नियमत की कदर करने की अल्लाह हमें तौफीक अता करे, और अपनी है ना कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग धोखे में, हदीस पाक में, नंबर एक सेहत, दूसरी फुर्सत। सेहत हो तो बंदा इसको भी गलत कामों में खर्च करता है, फुर्सत हो तो उसको भी गलत कामों में खर्च करता है। इन दोनों को अल्लाह पाक की याद में और इसकी इबादत में गुजारना चाहिए।
या मरहमा, हमारे पास जो एक डॉक्टर है, माहिर अमराज गुर्दा है, यूरोलॉजिस्ट है, उनके हमारे पास कुछ व्यूज है, वो नाज़रीन को दिखाते हैं, आइए देखिए।
मेरा नाम डॉक्टर साजिद अली है और मैं बतौर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट मदनी हेल्थ केयर सेंटर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। आजकल रमजान मुबारक का महीना है और इस महीने में जो गुर्दे की पथरी के हवाले से जो मरीज़ हैं उनका काफ़ी आना जाना रहता है, इस हवाले से मैं कुछ एहतियाती तदाबीर का तस्करा करना चाहूँगा। ख़ासतौर पर इस महीने में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 15-20 गिलास पानी या 2.5-3 लीटर पानी का है, और इस जो पानी के कोटा है इसको सही रफ्तारी में पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी एहतियाती तदबीर ये है कि जो मेन परहेज़ लोग बहुत सारे बताते हैं, लेकिन सबसे अहम परहेज़ ये रहेगा कि नमक का इस्तेमाल कम से कम रखें, और साथ में खट्टी चीज़ें ख़ासतौर पे लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि लीमू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि पथरी बनने के अमल को स्लो कर देता है या उसको बिल्कुल रोक देता है। इसके अलावा ये है कि रमज़ान मुबारक में ख़ासतौर पर मुरगन और मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं उसका परहेज़ करना बहुत बेहतर रहता है, ख़ासतौर पर पकौड़े और समोसे जो हमारे घरों में आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम इस्तेमाल रखें इन सब चीज़ों का, ताकि एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना हो।
मदीना मदीना,
पानी है सब, इसका क्या तरीकाकार बेहतर है? जैसे बाज लोग क्या करते हैं, अभी मुझे कल ही किसी ने बताया, उन्होंने कहा कि सहरी का वक्त जब ख़त्म हो रहा होता है तो उस वक्त में एक बोतल पूरी पानी की, जो है 1 लीटर बोतल पानी की, वो पीनी होती है।
तो इसको मैनेज कर लें, आप एक मोटा हम एवरेज बनाते हैं
जी,
कहीं 6 बजे इफ्तार है
जी
और 6 बजे ही रोज़ा बंद हो रहा है,
ठीक,
एक हम एवरेज बनाते हैं,
ठीक,
ये एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं,
सही।
तो कितने घंटे हो गए?
12 घंटे हो गए।
12 घंटे हो गए और आपने 15 गिलास पानी पीना है,
सही।
1 घंटे के बाद अगर 1 गिलास पानी पीते हैं
जी
तो आपके 12 गिलास हो गए,
सही,
ठीक है, क्योंकि अब सहरी के बाद तो नहीं पी सकेंगे आप जब रोज़ा बंद हो जाएगा
जी।
तो अब इसको आप है ना एक हर घंटे में 1.5 गिलास पानी को पकड़ लें और एक रिमाइंडर लगा दें, पानी का बोतल आपके साथ होना चाहिए, ये है। या फिर रात में जो लोग सो रहे हैं तो बोलेंगे भाई 12 घंटे को जागेंगे थोड़ी, 12 घंटे सोएंगे, तो आप और हम जाग रहे होते हैं, हर को तो नहीं ना जागेगा
जी।
हमारी रूटीन होती है, हमारे रात की सारी मसरूफियात है, एक्टिविटीज है कि हमें मतलब ये लेकर चलना पड़ता है
जी।
लेकिन जिनका सुबह ऑफिस होता है वो तो कह रहे वो तो सो जाएंगे, तो फिर उनको उस दौरान अपने आप के एवरेज के तौर पर लेना पड़ेगा ताकि इतना इनटेक हो जाए वाटर का, वरना फिर ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है गुर्दों में या दीगर चीजों के अंदर। तो वो अपने देखिए कोई भी आप करेंगे तो अपने तबीब से मशवरा करके करेंगे, बगैर तबीब से मशवरा करें तो हम भी यहाँ एक जनरल डिस्कशन कर रहे होते हैं लेकिन हर शख्स का एक अपना अपना निज़ाम बना हुआ होता है, तो कभी भी कोई भी बात बयान भी हो जाए ना तो उसको इम्प्लीमेंट तब तक ना करें जब तक आप अपने तबीब से अपने डॉक्टर से या फैमिली डॉक्टर से कंसल्टेंट ना करें।
ऐसी बात है, ये जो बिलखसूस जिनके डायलिसिस जिनकी हो रहे होते हैं उनको तो वैसे ही लिक्विड इनटेक कितना करना होता है ये उनको बता दिया जाता है कि उसी के मुताबिक, तो वो जाहिर सी बात है जो आपके डॉक्टर की तरफ से आपको सजेस्टेड है उसी को आप फॉलो करेंगे, लेकिन एक आम जनरल प्रोस्पेक्टिव पे किबला निगरानी शुरा ने डॉक्टर साहब ने जो बताया और ऐसा ने जिस
जनरल डिस्कशन होगी
ऐसी बात है। एक बात जैसे मुझे आपकी बातों से सीखने को मिली वो ये है कि अगर आप एक साथ पानी इतना पी लेते हैं तो ये आपको इतना बेनिफिशियल मतलब शायद होगा नहीं।
वो तो इतना सारा पानी डाल दिया क्या हुआ,
ऐसी बात
पानी एक डेढ़ गिलास पियेंगे तो उसके बाद एक आध घंटे के बाद ही वो रिक्वायरमेंट शुरू होगी ना।
ठीक,
अब एक साथ डाल देंगे तो वो यूरिन की सूरत में निकल ही जाना है।
ऐसी बात, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कॉल देते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी
के वर्गा में सवाल है कि घर में अमूमन वालदैन या वालदा अमूमन जो किचन में काम करती हैं वो सालन वगैरह एक ही दिन पकाती हैं और कहती हैं हम तीन चार दिन खाएंगे, या घर में कोई ऐसी चीज होती है जो बच जाती है उसको फ्रिज में स्टोर कर लिया जाता है और वो तीन चार दिन हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद वो खाई जाती है, तो क्या इन चीजों का भी सेहत पे असर पड़ेगा?
ये के जो मैंने डॉक्टरों से बकराईद के अंदर भी जो मेरी बात हुई थी तो ज्यादा रखने को तो वो मना करते हैं क्योंकि ये मतलब एक तो इसकी वो जो सलाहियतें हैं गिजाइयत है एक वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो इतना गोश्त बेहतर भी नहीं रहता, खाना भी बेहतर नहीं रहता और बस औकात ये होता है कि फिर उसके साइड इफेक्ट आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक आपको मुझे खैर बरकत दे, वसत दे, होना चाहिए बच गया है तो अगर कोई ठीक है नेक्स्ट टाइम जैसे सुबह का खाया तो दोपहर को आ जाएगा, शाम को खाना काम आ जाएगा, तो एक आध दिन का तो मुझे लगता है कि शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बहुत देर तक कई दिनों तक फ्रिज करके रखना हो सकता है कि इसमें नुकसान का कोई पहलू निकलता हो। मेरी नॉलेज के मुताबिक कुछ ना कुछ तो नुकसान का पहलू निकलता होगा कि फिर वो इतना ज़्यादा वो बेहतर रहता नहीं है, तो पता किसी को दे देना, अगर अल्लाह ने आपको दिया तो क्यों चार चार पाँच पाँच दिन तक संभाल कर रख रहे होते हैं, किसी के पेट में चला जाएगा अल्लाह आपको और दे देगा यार।
वाह मरहबा,
ये खैर ख्वाही की नीयत से कह रहा हूँ।
सुभान अल्लाह। जी कॉल लेते हैं।
हालात टफ होने की वजह से दो दो नौकरियां करनी पड़ती हैं, तो क्या ये नींद का सर्कल छुट्टी वाले दिन पूरा किया जा सकता है?
मैं तो सर्कल तो पूरा कर ले, भले दो दो नौकरियां करनी पड़े लेकिन नींद पूरी कर लें आप, वरना दो नौकरियों में से भी एक नौकरी रह जाएगी दूसरी नौकरी चली जाएगी।
तो कहते रहे छुट्टी वाले दिन सारा दिन सो के गुजार लेंगे वो पूरा
मतलब वो देखे रिसर्च ये है कि सात घंटे से कम नहीं सो, आठ घंटे से ज्यादा ना सो। इस पर भी किसी का इत्तेफाक है किसी का इत्तेफाक नहीं है तो अपनी अपनी जगह है, लेकिन हर चीज के माहिर होते हैं, तो जो मेडिकल से रिलेटेड लोग होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप सात घंटे से कम ना सोएं और आठ घंटे से ज्यादा ना सोएं। एक इंसान की बदन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको सारा वो पूरा फंक्शन को जो है ना वो रीसेट होता है हमारा पूरा बदन, तो अब मतलब कि आप इतना कम सोएंगे तो नतीजा निकलेगा कि आप आहिस्ता 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 ना बदन घिसता है बंदे का और फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते, फिर अल्लाह ना करे जहन काम नहीं करेगा, नींद ज्यादा आ रही होगी, आपकी इफिशियंसी कम हो जाएगी और इफिशियंसी कम होने की सूरत में कारकर्दगी जब कम होगी तो फिर नौकरी भी दाव पे लग जाती है। तो आप बंदा नौकरी करता है तो कोशिश करे कि मैक्सिमम जो मैंने अर्ज किया है फिर 19-20 का फर्क रहे, फिर बाद वक्त बदन या फिजिकली तो फिर ऐसा इंसान होता है कि फिर वो कम ज्यादा में भी गुजारा कर लेता है, मगर आप बोलोगे मैं एक दिन के अंदर कितना सो जाएगा, नमाजों का टाइम का क्या करेगा भाई, सात आठ घंटे और 10 घंटे में तो वैसे ही नमाज का टाइम आ जाना होगा, तो ऐसा कैसे होगा कि 12-15 घंटे का सोता रहेगा कवर करने के लिए, तो फिर नमाजों का क्या करेगा वो, उसकी तो नमाजें माशाल्लाह अल्लाह ना करे कज़ा हो जाएंगी, तो ऐसा इसकी तो इजाज़त नहीं ना मिलेगी, तो नमाज को भी तो आपने देखना भाई, फजर पढ़ के सोएंगे या ईशा पढ़ के सोएंगे ये सो जाए और फजर में उठ जाए, फजर के बाद कुछ देर नींद कर लें तो थोड़ी सी थकान उतर जाएगी, और इतवार को लोग थकान उतारने के साथ साथ इतवार को लोग अपने घर के पेंडिंग काम कर रहे होते हैं,
پورے ہفتے کے پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، سودا صاف لانا ہوتا ہے، کچھ مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں، پھر کچھ گھر گرہستی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ اب اتوار کو بھی وہ موبائل ہے، نیند اور یہ سارے، مطلب کہ وہ سست بن کے بیٹھا ہوا، یہ منہ لڑکا اگر گھر والے بولیں گے ہم نے کیا قصور کیا تھا یار، آج سنڈے کا دن ہے یا چھٹی کا دن ہے، وہ اس طرح کرے۔ پھر نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھے۔ انشاءاللہ تھکن لگتی ہے تو تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں یار،
مرحبا،
اللہ پاک انشاءاللہ اس سے اس کی برکت سے صحت بھی دے گا اور ہمت بھی دے گا اور پھرتی آ جائے گی۔
کیا بات جی، کال۔
میرا نام سے منور اتاریا ہے، میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے نگرانی چورا، ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور دماغ پردے میں سستی شامل ہوتی ہے۔
آمین و ایاکم، صحیح کہا، ایسا ہی ہے۔ جب تک بھوک باقی ہے ہاتھ ہٹا دینا چاہیے، ہاتھ روک لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو صحت ملے گی۔
جی کال،
علاج کروانے کے باوجود بندہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟
علاج کروانے کے باوجود بیمار ہو،
دیکھیں علاج کروایا ہے تو علاج کا نام شفا نہیں ہے، بندہ علاج کراتا ہے شفا تو اللہ دے گا نا۔ آپ نے علاج کروایا ہے، علاج میں ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی لی ہے، مگر اس دوا میں شفا تو اللہ دے گا نا،
صحیح،
یہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا، شفا اللہ دیتا ہے،
سبحان اللہ۔ جی کال،
اپنا کھانا سمجھ کر کھانا چاہیے، اپنے گھر میں اتنا نہیں کھایا جاتا ہے، شادی یا افطاری پہ جاتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں، بعد میں ڈاکٹروں کو اس سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، جو رات کو کھا کر سو جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیجئے۔
کھانا کھانے کے بعد جو ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سونے اور کھانے کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا فاصلہ رکھیں، مطلب وہ بھی ڈٹ کر کھانا نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے کو نہیں رکھا گیا، اس کو میڈیکلی بھی اس کو پسندیدہ نہیں ہے، تو آپ کو جب بھی سونا ہے تو آپ دیکھیں اسے 4 گھنٹے پہلے آپ اپنا کھانا روک دیں، تاکہ آپ کے بدن کو اس کھانے کو، کیونکہ پورا بدن پھر سوتا ہے اور بدن کا ایک آرگن ہے جس کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ہے میدا، کیونکہ جب آپ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو سارا بدن تو آپ کا کام میں نہیں ہے، مگر میدا کام میں ہے، تو وہ میدا کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو بھی سونے میں آپ کے لیے پرابلم تو کرے گا، کیونکہ وہ تو اندر فنکشن تو چل رہا ہے، آپریٹنگ تو ہو رہی ہے، آپریشن جاری ہے اندر میں میدے کا، اور وہ کھانے کو کہیں نہ کہیں تو آپ کے ڈسپوز آف تو کرے گا نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ مطلب عقل میں آنے والی چیزیں ہیں، اور جو بدن پر ایک پوری ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس پہ سب اللہ پاک کی قدرت ہیں۔ اب دیکھو، اب میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں، گردہ یوں کرتا ہے، پھیپھڑا یہ کرتا ہے، میدا یہ کرتا ہے، دل یہ کرتا ہے، بلڈ میں یہ تو، نسوں میں یہ تو، بلڈ کا یوں گھومنا، بندہ صرف اللہ پاک کی تخلیق انسان کا جو بدن ہے صرف اس پر غور کرتا رہے، زندگی نکل جائے گی، مگر یہ تمام تر یہ چیزیں سمجھ نہیں سکے گا۔
اللہ،
ایک تخلیق، انسان خود ایک ایسی تخلیق ہے اللہ رب العزت کی، کہ اللہ پاک نے، آپ دیکھیں یہ ابرو ہیں،
واہ واہ،
یہ ابرو ہیں
جی،
بظاہر اس کا کیا استعمال ہے؟
کچھ بھی نہیں،
مگر انسان کو حسن دیتا ہے،
سبحان اللہ،
نمبر ایک۔ دوسرا، آپ کا جب پسینہ آتا ہے نا تو آپ دیکھیں پسینہ یہاں رکتا ہے، یہ پسینے کو بھی آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں آنے دیتا،
واہ واہ واہ،
رکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے اس ابرو کے اندر اللہ پاک نے کتنی حکمتیں رکھی ہوں گی،
سبحان اللہ،
صرف اس ایک ابرو کی بات کرتے ہیں۔ اب ناخن کی بات کریں، اور وہ اب دیکھیں یہ پورے بنا دیے، مطلب دیکھیں تقسیم ہو گئی، انگلیوں کی بھی ایسی تقسیم کاری ہوئی ہے، مطلب اللہ پاک کی یہ جو انسان کا جو بدن ہے نا، اس بدن پر بندہ غور کرے نا تو بار بار ایک ہی جملہ کہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ویسے ایک تھوڑا موضوع سے ہٹ کے ایک سوال ہے، افطار دعوتوں میں شرکت کر رکھی ہے آپ نے؟
میرے پہلے جب سفر ہوتے تھے رمضان میں، یہ ایک ماہ کا اعتکاف نہیں ہوتا تھا،
صحیح،
تو میرے ماہ رمضان میں پنجاب کے دیگر سفر ہوتے تھے،
صحیح،
تو حاجی شاہد بھی ساتھ ہوتے تھے،
صحیح،
تو کئی شہروں میں نے سفر کیا، یعنی ماہ رمضان میرا سفر میں گزرتا تھا کئی مرتبہ، اور ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے تیسرے شہر جاتے تھے، تو جہاں جاتے تھے وہاں پہلے افطار، عصر سے مغرب افطار اجتماع ہوتا تھا، اسلام میں جمع ہوتے تھے، وہیں افطار کرتے تھے، وہیں مغرب پڑھتے تھے، مغرب پڑھنے کے بعد وہیں کھانا ہوتا تھا، کھانا کھانے کے بعد پھر وہیں سے آگے چل پڑتے تھے، फिर इशा होनी है, तरावी होनी है, फिर कहीं इज्तिमा होता था रात का तरावी के बाद, फिर कहीं सहरी होती थी, फिर सहरी हम वहीं करते थे जहाँ हमको आराम करना होता था, फिर हम वहाँ आराम करते थे, आराम करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल पड़ते थे और फिर हमें उस शहर में जाना होता था जिस शहर के अंदर हमारा इफ्तार का इज्तिमा होता था।
सुभान अल्लाह, आपने इफ्तारियाँ लोगों को भी करवाई होंगी कोई इफ्तार पार्टी के नाम पर, जैसे वो इफ्तार दावत के नाम पर लोग जमा करते हैं?
नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह तो नहीं होता रहा, फैमिली के बाद एक फंक्शन हो जाते हैं घरों के अंदर, अब तो वो आप इफ्तार में तो हम यहाँ बैठे हुए आपके पास क्या करेंगे। अभी अगर मैं घर में किसी को इफ्तार की दावत दे भी दूँ तो बोलेगा इमरान आकर करेंगे क्या, तुम अब तुमको जब चैनल पर ही देखना तो घर बैठ कर देख लेंगे भैया। तो ये होता है, तो
ऐसा कुछ अहवाल याद हो आपको, शिरकत तो की होगी आपने इफ्तार दावतों के अंदर, कोई इस तरह का होता ही है बंदा मतलब करता ही है, कोई अहवाल कोई याद आ रहे हो या कुछ
चाहते हैं कि हम उसे क्या निकलवाना चाहते हैं,
मतलब आप कोई इफ्तार दावत की कोई बात जो है ना वो बताएं उसको शेयर करें अभी हमारे।
मैंने कहा ना कि मेरे तो तंजीमी जदवल बनते रहे
सही,
और उसके बाद जब से ये एक महीने का अच्छा सहला साल से मुझे मदनी चैनल के नाजरीन मगरिब के बाद तो यहाँ देख रहे हैं,
सही ठीक है
आपके सामने ही है, तो अब मैं इसमें क्या आपके सामने कोई अपना ऐसा वाकया शेयर करूं।
आपकी वैसे इफ्तार से लेकर यहाँ तक आने की रूटीन ये नाजरीन को दिखाने की मैं नियत कर लेता हूँ, अल्लाह इस्तिकामत दे और ये हो सके तो फिर इंशाल्लाह हिसाब की इजाज़त से इसको कर ही लेंगे, और अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखे, और सेहत का जो लिहाज और ख्याल रखने की आप देखिए कितनी ज़बरदस्त बात बताई है, और इस बात पर फोकस करके हमारी आखिरत का कितना फ़ायदा होगा, निगरान ने जो फरमाया कि ये बात जहन में बिठा लें सेहत अच्छी रखनी है ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं, अल्लाह हमें ये नसीब फरमाए और जो हुकूक की अदायगी
हमें अल्लाह पाक ने पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है।
या मरहबा,
अपने मकसद को पाने के लिए ही तो काम करना पड़ेगा।
जी कॉल लेते हैं,
आप बीमार हो तो सबसे पहले क्या करते हैं?
हाँ जी
कौन सा,
आप बीमार हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? अरे वाह भाई, सवाल करने वाले ने देखें सवाल कर ही लिए,
जैसी बीमारी दुआ भी करते हैं, मतलब मुख्तलिफ चीजें होती हैं, सबसे पहले सबसे बाद वाला तो सिक्वेंस तो नहीं बन पाती है कि पहले क्या, तो बंदा गौर करता है किस वजह से बीमार हो गया, फिर दवाई का इत्तेमाम करता है, दुआएं करवाता है, और मौका मिले तो दम भी करवा लेता है, तो ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं, फिर आराम करने का होता है क्योंकि ज्यादातर बीमारी में आराम करना होता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, आपके सेल्स वीक हो जाते हैं, आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जब आप रेस्ट करते हैं तो वो चीज़ें इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं, तो डॉक्टर नॉर्मली आपको रेस्ट का मशवरा देते हैं, तो कुछ रेस्ट करना हो तो ये सारी चीज़ें होती है, वैसे बीमारी में बंदा रेस्ट नहीं करे तो क्या करेगा, बदन ही काम नहीं कर रहा होता और काफ़ी चीज़ें आपकी आपको वीक कर देती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, तो प्रॉपर तो वैसे तो इलाज और परहेज ये दोनों चीज़ों को लेकर चलना होता है, इलाज भी चल रहा है परहेज भी चल रहा है, इलाज चले और परहेज ना करें तो फिर दवाएं उमूमन फर्क नहीं डालती बल्कि साइड इफेक्ट लेकर आ जाती
है।
अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जब भी किसी सेहतमंद या इस तरह लोग देखें तो कम से कम एक बार कह दिया करें माशाल्लाह बारकअल्लाह ताकि उसको नजर ना लगे। इजाजत दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
आओ सीखे भलाई की बातें, सबको सिखाए भलाई की बातें।